ओम शांति। बाप दादा के आशाओं के दीपक, दादियों की आज्ञाकारी, यज्ञ के ईमानदार, वफादार और ब्राह्मण परिवार के आशाओं की दीपक, कन्याओं के लिए रोल मॉडल, ऐसी बाप दादा की अमूल्य रतन, आदरणीय आशा दीदी हम सभी के बीच में उपस्थित है। एक हाथ की ताली से आशा दीदी जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, आपने ईश्वरी ज्ञान को दिल्ली में रहते हुए प्राप्त किया, जिसको 51 ईयर्स हुए हैं। विद्यार्थी काल में ही आपने सोशियोलॉजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आपने प्राप्त किया हुआ है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी आपने प्राप्त किया, इस बात के लिए ताली बजाएंगे। आपने अपने जीवन 45 ईयर्स से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से समर्पित करके ईश्वरी सेवाएं आप दे रहे हैं। आप प्योरिटी पेपर के सह संपादक हैं। आप देश विदेश में चक्कर लगा करके वैल्यू एजुकेशन के लेक्चर भी आपने अनेक बार दिए हुए हैं। आप 86-87 में यूरोपीय कंट्री में रह करके ईश्वरी सेवाएं भी आपने दी हुई है। वर्तमान समय आप दिल्ली स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। साथ में आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसे बाबा की अमूल्य रतन आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो कि नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को भी आप संबोधन कई बार कर चुकी है। आपकी जी जागरण आस्था संस्कार चैनल में भी प्रवचन घर बैठे अनेक आत्माएं सुनकर के बाबा का मैसेज पाकर के अपनी जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं, जिनकी दुआएं आपके पास प्राप्त है। तो ऐसे अमूल्य बाबा की रतन आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी, जिनके स्वमुख से अभी हम ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। आज का आपका विषय है खुशनुमा, खुश नसीब, खुश किस्मत स्थिति का आधार योग युक्त स्थिति। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। विषय जो बहन ने सुनाया, खुशनुमा, खुश किस्मत और खुश नसीब। तो खुश किस्मत और खुश नसीब को तो मैं एक चीज समझती हूँ, लेकिन खुशनुमा और खुश नसीब कहो या खुश किस्मत कहो, इस विषय को हम लेंगे। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर सबसे न्यारी और निराली चीज जो प्रदान की है वो है खुशी। आज खुशी चेहरों पर दिखाई नहीं देती। चेहरे अगर देखो तो तनाव ग्रसित, कंफ्यूज्ड, खोए हुए नजर आते हैं। और बाबा के बच्चों के चेहरे सदा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अगर गहन अध्ययन में भी है, गहन योग में भी बैठे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्राह्मण आकर नैन मुलाकात करता है तो मुस्कुराहट नेचुरल रूप से चेहरे पर आ जाती है। क्या कारण है? ऐसी कौन सी उपलब्धि बाबा ने हम बच्चों को कराई है जिस आधार से सदा स्वयं को हम खुशनुमा अनुभव करते हैं? खुशी एक ऐसी चीज है जिसके दो पहलू हैं। एक है अल्पकालिक खुशी और एक है सदाकालीन अविनाशी खुशी। जो अल्पकालिक खुशी है वो बाहर की है, कोई प्राप्ति हो गई, थोड़ी सी प्रशंसा हो गई, थोड़ी सी कुछ उपलब्धि हो गई तो खुशी आ जाती है, और अगर वो चीज हमसे ले ली गई तो खुशी भी साथ ही चली जाती है। और दूसरी है अविनाशी, रूहानी, सदाकालीन, आंतरिक। हम बच्चे दूसरे प्रकार की खुशी का अनुभव भी करते हैं, और बाबा जब हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे खुशी बांटो तो हम दूसरे नंबर की खुशी ही बांटते हैं। और आज सवेरे का वरदान कितना अच्छा था कि आपके खुशनुमा चेहरे को देख करके, आपकी खुशी को देख करके दूसरों का दुख दूर हो जाए। बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत ऊंची मंजिल है। अब ये स्थिति हमारी कैसी रहे? आते आते कुछ एक बातें मैं सोच रही थी। पहली बात, खुशी हमारी तब कायम रह सकती है जब हम बच्चे जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई को हम कायदे अनुसार अच्छी तरह पढ़ते हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा की मुरली में, बाबा की पढ़ाई में सब रस समाये हुए हैं, और जितना जितना पढ़ाई की धारणा जीवन में होती जाती है उतना खुशी का पारावार बढ़ता जाता है। बाबा हमें यही सिखाते हैं, बच्चे तुम्हारी खुशी कापारी होनी चाहिए। कापारी खुशी जो कि पांव के अंगूठे से लेकर के कपाल तक, कपाल कहते हैं पांव के अंगूठे से लेकर के कपाल तक, ऐसी तुम्हारी खुशी हो। और वो खुशी जब कोई बच्चा पढ़ाई अच्छी पढ़ता है तो नेचुरल है उसको खुशी होगी। बाबा की एक आज्ञा है जिसका वो पालन कर रहा है, और बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई इनकम कराती है। तो व्यक्ति को खुशी कब होती है? जब उसके जीवन में कमाई होती है। जिसकी मुट्ठी दोनों भरी हुई है उसे कमाई का अनुभव होता है तो स्वाभाविक रूप से वह खुश होता है, बढ़ता जाता है ना अपने अंदर, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक है पढ़ाई और दूसरा है कमाई। कमाई करने के साधन बाबा ने हमें अथाह बताए हैं। अथाह, केवल कमाई करने वाली अगर बुद्धि बन जाए, बाबा कहते बच्चे तुम बिजनेसमैन भी हो, और बिजनेसमैन क्या करता है? कमाई करता है ना। तो कमाई करने के साधन हमारे बहुत हैं, अनेकानेक हैं। जिसकी बुद्धि में ये बात बस जाती है कि मुझे कमाई करनी है अपनी भविष्य के लिए, तो उसे खुशी का अनुभव ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि कमाई करता जा रहा है। तीसरी बात, कमाई करके वो जमा भी करे। एक है मैंने कमाई की, लेकिन कमाई करके अगर मैंने साथ ही साथ उसे खर्च कर दिया, जमा नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है खुशी कहां से आएगी। तो जमा का खाता भी मेरा बढ़ना चाहिए। उदाहरण के रूप से मानो कोई ने बहुत अच्छा भाषण किया और भाषण करने के बाद उसको सब ने बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की, और वो प्रशंसा को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि मैं तो बहुत अच्छा भाषण करता हूं, और नशा भी चढ़ जाता है उस चीज का, तो उसका जमा का खाता नहीं हुआ। जमा का खाता तब होगा, खुशी तब होगी, जब जो प्रशंसा मिली उसे बाबा को ट्रांसफर कर दे, बाबा के कारण से है, अन्यथा ये चीज हमारे लिए विनाशी हो जाएगी। प्रशंसा सुनी, खुश हुए, और प्रशंसा कोई ने नहीं की तो मायूस हो गए, टेम्प्ररी, विनाशी। इसलिए कमाई के साथ साथ जमा का खाता अपना बढ़ाते रहने से खुशी जीवन में आती जाती है। चौथी बात, जितनी खुशी हम देने से एकत्र कर सकते हैं उतनी लेने से नहीं। बाबा ने जब हमें विधि बता दी कि बच्चे तुमने देना है, देवताओं के वंशज हो, दाता के बच्चे हो, तो तुम्हारा काम है देना। ये एग्जाम्पल हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति कोई चीज देता है तो रिटर्न में हम तुरंत उस समय की, उस वक्त की ताक रखते हैं कि मैं इसका रिटर्न कर दूं। करते हैं आप कोई के पास से अगर गिफ्ट लेने जाते हैं, गिफ्ट मिलती है, आपका दिल क्या करता है, जितना मुझे मिला उससे एक रत्ती ज्यादा ही हो, कम ना हो, मेरे पर बोझ ना चढ़े। खुशी गायब तब होती है जब लेने की प्रवृत्ति मन में बसी रहती है। अगर मन में सदा देने की प्रवृत्ति होगी तो हमारी खुशी जमा भी होगी और दिखाई भी देगी, क्योंकि देना ईश्वरीय क्रिया है। बाबा देता है, और बाबा के बच्चे होने के नाते जितना ही हम देते हैं उतना हम स्वयं को खुश अनुभव करते हैं, खुश नसीब समझते हैं। तो देने की प्रवृत्ति हो। एक और मैं आपका ध्यान और खिंचवाना चाहूंगी, और वह है मर्यादाओं का पालन। जितना जितना हम बच्चे मर्यादाओं का पालन करते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी के नाते मेरी क्या मर्यादाएं हैं, मैं एक शिक्षिका हूं, शिक्षिका के नाते मेरी क्या मर्यादाएं हैं, अगर मैं उनका पालन पूर्ण रूप से करती हूं तो मेरी खुशी कदापि गायब नहीं हो सकती। खुशी भी होगी और उसके साथ शक्ति भी होगी। नेचुरल है, आप बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, तो स्वाभाविक है मन और बुद्धि शक्तिशाली होंगे और खुशनुमा स्वतः होंगे। साथ ही साथ याद रखिए, सदा बाबा कहा करते थे, पंजाबी के हैं, वंड खाओ खंड खाओ। कोई भी चीज अगर हम बांटते हैं, आपने कभी गौर किया होगा, बाबा के हाथ से जिसको टोली मिलती है, बाप दादा आते हैं ना, तो कई आत्माएं बाबा के हाथ से टोली लेती हैं। कई आत्माएं जो हाथ में लेती हैं टोली, अब एक है आपको बाबा ने दी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वो टोली मिली। एक है आप चुपचाप स्वयं खा लो, आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं, आपको मिली है, आप अधिकारी हैं। और दूसरा है उस टोली के छोटे छोटे टुकड़े करके आप 10 जनों को बांट दो, ज्यादा खुशी किसमें होगी? होगी ना। ऐसे ही हर प्रकार से ये असूल बाबा का जो दिया हुआ है, वंड खाओ खंड खाओ, आपको कोई महिमा मिलती है। एक है आपने किया है, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी प्लानिंग है, आपके अपने ही कई तपस्या आपने की होगी जिससे वो आपका स्वरूप सामने आया और आपको महिमा मिल रही है। दूसरा है उस महिमा को बांट दो। अकेला तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता। अगर वो बढ़ जाती है कि नहीं, ये मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, इन सबके कारण से है, तो खुशी किसमें ज्यादा होगी, वाहरे में या वाहरे हम सब? किसमें? वाहरे हम सब। तो बांटना ये एक खुशी को बढ़ाने का साधन है। अब आती है बात खुशनुमा, मैं सदा कैसे रहूं? खुशनुमा अर्थात चेहरा हर्षित रहे। चेहरा हर्षित रखने के लिए ज्ञान युक्त बुद्धि और योग युक्त स्थिति ये चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि अर्थात ऐसा तो नहीं है कि हम ब्राह्मणों की लाइफ कोई बेड ऑफ रोजेस है, गुलाबों की राहें तो नहीं है हमारी। हमारी राहें कोई फूलों से भरी हुई तो नहीं है। हमने अपने पूरे 84 जन्म लिए हैं और 84 जन्मों में हमने कईयों के साथ अपने हिसाब किताब बनाए हैं। वो हिसाब किताब हमारे संगम पर ही चुक्त होने हैं, सत्युग में नहीं होने वाले, त्रेता में नहीं, द्वापर कलयुग में सवाल नहीं। जो भी हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो हमारे संगम पर समाप्त होने हैं। और याद रहे, किसी भी प्रकार का जो हिसाब किताब है वो फालतू नहीं है। जरूर उसके पीछे कोई कहानी है। अब पिछले जन्मों की कहानी तो हम जानते नहीं, वर्तमान की हम जानते हैं, अगर याद रहती है तो। तो वर्तमान समय अपने आप को सदा खुश रखने के लिए, अगर ज्ञान के गुह्य राज को मैं बुद्धि में रखती हूं तो मैं कदापि अपनी खुशी गुम नहीं करूंगी। जो घटना, जो परिस्थिति, जो बात मेरे सामने आती है, उसको ज्ञान के तराजू पर तोल लूं, और अगर ज्ञान अप्लाई कर लूंगी तो मेरी खुशी गायब नहीं होगी। बाबा, जो हम बच्चों को कहते हैं उसके पीछे रहस्य है। बच्चे, क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल अगर तुम करोगे तो नतीजा ये होगा कि तुम्हारे पास क्यों की क्यों लगेगी। ये फॉर्मूला है, और अगर तुम बिंदी लगा देते हो तो सब कुछ भूल जाता, फिनिश्ड। अब पास्ट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो चला गया। लेकिन एक कमजोरी हम आत्माओं के अंदर है, बहुत कम बच्चे उसमें पास हो पाते हैं कि जो घटना घट गई उसको बारंबार हम याद करते हैं, और याद करने के कारण अपनी जो मेरी स्मृति है, जो शक्तिशाली होनी चाहिए, खुश नुमा होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती है। यहां तक कि पास्ट को याद कर दो आंसू भी बहा लेते हैं, नैन भी गीले हो जाते हैं, और वर्णन भी कर देते हैं, प्लीज मेरे को पिछली बातें याद मत कराओ। कारण, ज्ञान को इतना पावरफुल ब्रेक नहीं बनाइए। अगर ज्ञान ब्रेक के रूप से, स्पेशली ड्रामा की पॉइंट, अगर ब्रेक के रूप से मैं अच्छी तरह यूज करती हूं तो मेरी खुशी गायब नहीं होगी। हमें याद आता है जब हम कोर्स कराया करते थे, आजकल तो कोर्स कराने का मौका नहीं होता, लेकिन जब कोर्स कराते थे तो विद्यार्थी को ये होमवर्क देते थे जब ड्रामा का लेसन आता था कि कल जब आप आएंगे तो आपने ये पॉइंट अप्लाई करनी है और रिजल्ट सुनानी है। कि आपने कितनी बातों में ड्रामा की ब्रेक को लगाया। खुशी गायब होने का कारण चिंतन होता है, पुरातन चिंतन। और अगर हम उस चिंतन को छोड़ देते हैं, पास्ट हो गया ना, वापस नहीं आना ना। ये समझदारी भी है, जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, परंतु फिर अप्लाई नहीं करते। अप्लाई न करने के कारण खुशी हमारी गायब होती है, चेहरा हमारा गायब, खुशी को गायब दिखाता है, और चेहरे के ऊपर चिंता की रेखाएं दिखती। बाबा, पिछले कितने वर्षों से हम बच्चों को इस ही बात की ताकीद कर रहे हैं कि मीठे बच्चे, असली सेवा जो होगी वो आपके चलन और चेहरे के द्वारा होगी। यही कह रहे हैं ना। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे सेवा तुम्हारे भाषण से होगी, सेवा तुम्हारे शिविर से होगी, सेवा तुम्हारी पब्लिसिटी से होगी, कभी नहीं कहा। सदा कहा सेवा चलन और चेहरे के द्वारा होगी। तो मुझे जो प्रिपेयर करना है अपने आप को, जिस सेवा के साधन के लिए किसी के पास कोई भी कंप्लेन नहीं हो सकती। भाषण के लिए हम कह सकते हैं मुझे थोड़ी चांस मिलता है, मुझे चांस मिले तो मैं ऐसा कर लूं। शिविर के लिए हम कह सकते हैं मुझे थोड़ी चांस मिलता है, लेकिन चलन और चेहरा तो हर एक को बाबा ने दिया है ना, वो तो मेरे पास साधन है ना। इस माध्यम से करने के लिए ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होगा। मुझे याद आता है, मैं अभी नई ही ईश्वरीय सेवा में आई थी। पांडव भवन दिल्ली नया लिया गया था और वहीं पर बाबा ने मुझे पहले दिन से रखा। तो दिल्ली में बहुत बड़ा मेला होने जा रहा था और उसमें सारे भारत से अपने महारथी भाई बहने आए थे, मीटिंग होनी थी। संजय गांधी की डेथ हुई थी, इंदिरा जी से मिलने के लिए हम सब गए थे। पर चांस वो अपॉइंटमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हमने आशा रखी थी। मुझे शाम को सारा प्रोग्राम कंडक्ट करने की ड्यूटी दादी ने दी थी। अपॉइंटमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, मेरा दिल उदास हो गया और मैंने गुलजार दादी को कहा, दादी मैं शाम को प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? अपॉइंटमेंट अच्छी नहीं हुई। गुलजार दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा, क्या यह ज्ञान है? फिनिश्ड। इन तीन शब्दों से एक्स्ट्रा एक वर्ड दादी ने नहीं कहा, इतना ही कहा, क्या ये ज्ञान है? बात दिमाग को टच की और मैंने वो पार्ट प्ले किया। क्यों हम मायूस होते हैं, उदास होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं? उसका कारण है कि हम स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो महिमा है चाहे वो निंदा है। केवल महिमा स्वीकार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम निंदा भी स्वीकार करते हैं वो भी ठीक नहीं है। कल एयरपोर्ट पे बैठी थी, एक बहुत सुंदर स्लोगन, पुरानी चीजें कोई नई नहीं है, अ टाइगर डज नॉट वरी व्हाट ओपिनियन अ शीप होल्ड्स फॉर हिम। एक शेर बॉदर नहीं करता एक बकरी उसके लिए क्या ओपिनियन रखती है। अगर एक बकरी के ओपिनियन से शेर अपने आप को चलाना शुरू कर दे तो शेर थोड़ी रहा। इसी रीति से हमारे जीवन के अंदर अनेका अनेक बातें आती, परिस्थितियां आती हैं। अगर हमारे अंदर स्वीकार करने का संस्कार है, याद रखिए बाबा ने एक परहेज बताया हुआ है और वो परहेज जब हम छोड़ देते हैं तब हम दुख का या नाखुशी का अनुभव करते हैं। और वो है परहेज, कभी स्वीकार मत करो, योगी की एक निशानी है। निंदा स्तुति दोनों से पार होता है। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, समानता का संस्कार योगी लाइफ का है। अगर स्वीकार करने की आदत आ जाती है तो हम योगी नहीं कहलाएंगे। मुझे क्षमा करना शब्द कड़ा है, लेकिन स्थिति हमारी वही बन जाती है जिसको बाबा कहता भोगी। भोगी केवल विषय वासना वाला नहीं, लेकिन महिमा का भोग करना या निंदा का भोग करना वो भी तो भोगी ही हुआ। इसलिए ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान का जो जीवन है, ज्ञान की जो पढ़ाई है, वो केवल वर्णन और मनन तक नहीं है। आप मनन कर लें, वर्णन कर लें, उस तक नहीं है। ज्ञान की पढ़ाई मगन अवस्था में रखने के लिए, मगन किस बात में? अपने लक्ष्य के प्रति। प्यारे भाई और बहनों, चलते चलते हम अपने लक्ष्य से भी विचलित हो जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। कारण अन्य बातों में चले जाते। वो मेरा टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन इसके साथ संबंधित है। ये हमारा एक, जिसको हम कहें मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक चलते चलते हो जाती। मिस्टेक केवल मात्र किसी को दुख देना नहीं है, लेकिन स्वयं को मैंने क्या कर लिया? अगर मैं अपनी स्वस्थिति को ठीक नहीं रखा तो ये मिस्टेक नहीं है, ये भी तो मिस्टेक है। तो ज्ञान का मनन, चिंतन और ज्ञान की अवस्था में स्वयं को सदा रखना, यह अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखेगा। परिस्थिति बड़ी बड़ी आती है, मुस्कुराते रहे। साकार बाबा कितनी कठिन परिस्थितियों से पार हुए, कितनी कठिन परिस्थितियों से बाबा सदा मुस्कुराते थे, सदा मुस्कुराते थे। बीत जाएगा, क्यों? उसके पीछे बाबा का दृढ़ निश्चय था, ज्ञान था, निश्चय था और साधना थी। ये तीनों चीजें चाहिए। निश्चय, ये बाबा का यज्ञ है, इसे आंच आ नहीं सकती, मैं तो केवल निमित्त हूं। मेरा और मैंपन खुशी गायब करता है, खुशनुमा चेहरे को गायब करता है। कल की जो मुरली थी साथी और साक्षी की, साक्षीपन की स्थिति खुशनुमा रखती। और जब मैंपन में आ जाती हूं, मेरेपन में आ जाती हूं, तो स्वाभाविक रूप से जब किसी चीज को अपना समझती हूं तो जरूर दूसरे को पराया समझती हूं ना। तो वो भावना खुशियों की, खुशनुमा की, वो नहीं रह जाती। तो निमित्त भाव और बाबा में निश्चय, जितना ये होगा लाइफ के अंदर उतना खुशनुमा रहेंगे। प्रॉब्लम आती है, ट्रांसफर कर दो ना बाबा को, बाबा की प्रॉब्लम है, बाबा की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। लेकिन इतना ज्ञान की स्टेज हो तो, इतना बाबा को करीब से अपना बनाया हुआ हो तो, अब प्रायः जब कोई बात आती है तब हम योग लगाना शुरू करते हैं, योग लगाओ भाई, योग लगाओ, ये विघ्न आया योग लगाओ। तो पहले क्या कर रहे थे, वियोग में थे, पहले वियोग में थे। योग युक्त स्थिति अर्थात सदा बाबा को साथी बना के रखना, कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, कभी कोई ऐसी भारी बात होती है तो हम स्पेशल संगठन का योग करते हैं, लेकिन नेचुरल अवस्था कौन सी चाहिए, योग युक्त चाहिए। जितनी योग युक्त स्थिति होगी वो एक निशानी है कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। जिसका साथी सर्वशक्तिमान है उसके सामने ऐसी बातें जो खुशी गायब कर दें वो हो नहीं सकती। बात आएगी, बाबा की बात को याद रखें, जहां बात है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां बात। भगवानोवाच ये उसी रीति से होता है प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कौरव और पांडव दो सेनाएं बताई गई हैं। हमारे सामने रोज महाभारत है, सिलेक्ट मुझे करना है, मैंने पांडवों की लाइन में जाना है या मैंने यहां खड़े होना है दूसरी लाइन में। बड़े बड़े विद्वान आचार्य वो भी कौरवों की लाइन में दिखाए गए, क्यों? कभी जरूर गए होंगे ना, हारे होंगे ना। तो अपनी बुद्धि को योग युक्त जितना हम रखेंगे उतना बाबा की बात स्ट्राइक करेगी, टच करेगी। खास योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बाबा सर्च लाइट मेरे साथ है, बाबा तुरंत बता देगा, बच्चे ये करना है ये नहीं करना है, ये कदम उठाना है ये नहीं उठाना है। तो जितना योग युक्त स्थिति होती है उतना परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति भी आती है, बातों का सामना करने की शक्ति भी आती है। और शक्ति आने से हमारे चेहरे की खुशी गायब नहीं होती। यहां कई बैठे हैं, जरूर बैठे होंगे, जिनके लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी होंगी, बहुत बड़ी बात हुई लेकिन मुस्कुराते रहे। मुझे अपने दिल्ली के एक भाई थे, भूलता नहीं है उनका, परीक्षा का दौर, उनके निश्चय की परीक्षा अच्छी बाबा ने ली, खूब अच्छी। आज तो वो इस देह में नहीं है, भ्राता राजकुमार मित्तल होते थे दिल्ली के, सारे दिल्ली बिजली का जो बोर्ड था उन दिनों में एक होता था, उसके चीफ इंजीनियर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, बाबा के बच्चे थे। लेकिन कलयुगी दुनिया है और कलयुगी दुनिया में कई प्रकार की बातें होती हैं, कई प्रकार की बातें होती हैं। इतने ईमानदार ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई, सीबीआई उनके पीछे लगी, फाइल चली। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा राजकुमार भाई आपने पता किया आपकी फाइल का क्या हुआ? दीदी मुझे क्या पता करने की जरूरत है, मुझे पता करने की जरूरत नहीं।
जिसका अपना जीवन इतना क्लियर पारदर्शी होता है,
जीवन में जिसके सच्चाई और सफाई है,
जो दादी जानकी रोज हमें पाठ पढ़ाती है, बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? सच्चाई और सफाई वाले। जितना ये दिल सच्चा होगा उतना शक्तिशाली होगा और उतना खुश होगा। इसको कहा जाता खुश नसीब, खुश किस्मत। जिसके हाथों से, कर्मों से सदा श्रेष्ठ कर्म की रेखाएं ही खींचती, निश्चिंत होगा। बाबा के निश्चित निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहता है। इनका मिसाल हमने आंखों देखा, कल हमने गुलजार दादी को देखा। दादी को जब कमरे में कहा, दादी ने कमरे में कहा शुभ भावना रखो, और दादी थोड़ी ठीक हुई, दादी का दादी चलेंगे कहां, वो बिल्कुल असमर्थ थी, थोड़ा सा ठीक हुई, दादी चलेंगे, हां जी। क्यों नहीं बाबा अपने वरदान, अपनी शक्ति ऐसी आत्मा के ऊपर बरसाएगा? जो इतनी खुशी कल बाबा दे करके गया, बाबा का आना और इतनी पावरफुल दृष्टि देना, सदगुरु के रूप से वरदानी हाथ देना, सबको दादी को कितनी खुशी जो उनके माध्यम से मिली, बाबा कितना प्यार करेगा। कभी हमने देखा गुलजार दादी का चेहरा ऐसा टाइट देखा हमने कभी नहीं? क्या कारण है? दादी से पूछा, दादी आप वापस गए तो बाबा ने क्या कहा? दादी कहती, बाबा ने कहा देखो सब खुश हो गए थे ना, कितने खुश हो गए, कितनी दुआएं मिल गई। तो खुशनुमा, खुश किस्मत, ये संगम युग की हम बच्चों की बाबा के द्वारा दी हुई सौगात, और इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर सच्ची बात देखी जाए तो जैसे बाबा हम बच्चों को ज्ञानी और योगी देखना चाहते हैं, शायद अभी हमारे पुरुषार्थ में वो कमी। इतनी खुशकिस्मती जिसे भगवान मिले, डायरेक्ट भगवानों वाच, जो डायरेक्ट हम अपनी झोली में भरें। लोग इनका वर्णन करेंगे और हम सम्मुख, कितने खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं जो भगवानों वाच को अपनी झोली में भरते हैं। सवाल ये नहीं है, याद रखिएगा, सवाल ये नहीं है कि मैंने बाबा को पा लिया या नहीं। असली खुश किस्मती और खुश नसीबी तब है कि बाबा को पाने के बाद मैंने क्या किया। आपको 10 करोड़ की लॉटरी मिल गई, यह आपकी खुश किस्मती है, लेकिन 10 करोड़ की लॉटरी मिलने के बाद आपने क्या किया? ऐसे पड़ी रही या उसको यूज किया? विवेक कहता है यूज करने में हमारी खुश नसीबी है। बाबा को पाने के बाद हमारा चार्ट खुश नसीबी का आरंभ होता है। पा लिया ना, पा लिया, पाने के बाद क्या किया? जो कहते ना, जब भगवान बांट रहे थे, भाग्य बांट रहे थे, तो तुम कहां थे? बांटा मैंने, ले लिया, उसके बाद क्या किया? ऐसे हमें ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिला, जिस ज्ञान से सारा ज्ञान निकला है। सूर्य ने मनु को दिया, ये सब मनु बैठे हैं। ज्ञान सूर्य बाप ने हम सब बच्चों को दिया, हम बच्चों ने आगे दिया। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिला, ऊंचे से ऊंचा राजयोग का अवसर मिला, योग लगाने की विधि सीखी, ऊंचे से ऊंचा मंत्र मिला, हर चीज ऊंचे से ऊंची मिली। ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन मिलने के बाद क्या किया? इसकी एक कसौटी जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सरल है और हम सब उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है। जब हम किसी भी ज्ञान की बात का वर्णन दूसरों को करते हैं, योग का वर्णन जब हम दूसरों को करते हैं, तो कैसा करते हैं? योग से ये होता है, योग से ये होता है, योग से ये होता है, ज्ञान से ये होता है। उस ही चीज को जरा अपने ऊपर अप्लाई कर लें कि जो मैं ये वर्णन कर रही हूं, ये मेरे पास भी अनुभव है। और अगर इस साधना में हम लग जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, तो ये जीवन, चलन और चेहरा खुशनुमा रहेगा। जो हम दूसरों को कहते हैं, अरे क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, क्यों घबराते हो, तब दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? जो जिस तन लागे वो तन जाने, यही बोलता है ना। आप मेरी जगह हो ना, तो आपको पता लगे। उस चीज को अपने ऊपर लगा लें और तब अपने आप को अंदर ही अंदर तोलें, देखें, चेक करें, तो इसमें आप सच पूछें, पिछले कुछ समय से एक ही बात बुद्धि में आती है, जो मैं सभी क्लासेस में बताती हूं, हमारी और कोई भी चीज उसको किनारे कर दो। अब हम सबका अटेंशन योग युक्त स्थिति पर चले जाना चाहिए। खूब 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 बाबा की याद को जीवन का हम अपना हिस्सा ब्लड की तरह बना लें। जैसे शरीर में खून है, ऐसे बाबा की याद हमारे रोम रोम में हो, ये अनिवार्य। तब आगे आने वाली बातों का सामना करते हुए भी हम सदा अपने आप को खुशहाल, खुशनसीब, खुशनुमा अनुभव करें। वर्तमान समय के अनुसार और कोई चीज काम में आने वाली नहीं, केवल योग साधना, केवल योग साधना। जितना हमारा बाह्यमुखी जीवन है, अगर ये जीवन अंतर्मुखी इतना हो जाए तो उसमें बल। अभी मैं पीछे 3-4 दिन पहले सोनीपत में थी, जब दादी के साथ सोनीपत जाना हुआ तो वहां एक सज्जन आए, बहुत बड़े अपने देश के व्यक्ति के बेटे, उन्होंने अपना अनुभव बताया। कहा मेरी कंडीशन ऐसी हो गई, वो ज्ञानी नहीं है, बीके नहीं है, उनकी युगल चलती है, तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी जो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, और उनकी युगल को बोल दिया था आपने अब कुछ करना है सो कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। वो युगल अपना अनुभव बताती है, सारी रात योग किया पावरफुल संगठित रूप से, और नेक्स्ट मॉर्निंग से उस आत्मा की हालत बेटर होना शुरू होती है, और आज वो मंच पर खड़े थे। क्या चीज है योग? योग में वो जादू है, और अपना अनुभव बता रहे थे। मैं 1 महीना हॉस्पिटल में था और बिल्कुल साइलेंस में था, साइलेंस में रहते मुझे इतना क्लियर हो गया था नीचे कौन आया है, गाड़ी कौन पार्क कर रहा है, बेल कौन बजा रहा है, कहते मुझे सब पता लग जाता और मैं बताता था। तो ये तो एक साधारण आत्मा बता रही थी, हम तो बाबा के ज्ञानी योगी बच्चे हैं। अगर हम इस साधना को जीवन का अपना सच में उस भाव से अगर हम इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो बाबा हमारे द्वारा क्या कर्तव्य नहीं करा सकता। हम तो बाबा के शुद्ध पवित्र बच्चे हैं, बाबा हमारे द्वारा कितने कार्य करा सकता है। इसलिए इन चीजों पर, ज्ञान और योग के ऊपर अब हम सबका ज्यादा अटेंशन। सेवा अपने आप, ये सेवा का सबसे बड़ा साधन ज्ञान युक्त स्थिति, योग युक्त स्थिति, खुशनुमा चेहरा और हमारी चलन। और ये साधन सेवा का हर एक के पास है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। बाबा सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम सबको ये अवसर है, तो अवश्य हम इस चीज से क्या होंगे, प्रवीण बने, एक्सपर्ट बने। ठीक है, एक्सपर्ट बनना है, खूब 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 अपने मन को शुद्ध रख करके, सुंदर मन जो बाबा को प्रेजेंट करने योग्य हो, ऐसा मन। मन मना भव तब होगा ना, जब सुंदर मन होगा, ये बाबा को प्रेजेंट कर। ठीक है, ओके, हाँ ओके। ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा की मीठी याद में बैठते हैं, बैठेंगे ना, खो जाओ बाबा की मीठी याद में, खो जाओ। और हमारे लिए दुनिया में है ही कौन, रोज गाते हैं, कोई नहीं अपना सब पराए हैं, एक बाबा ही अपना है, हर कोई यही कहता है, तो क्यों ना इस ही का अभ्यास निरंतर चलता रहे। ठीक है, खो जाए, बिल्कुल विलीन हो जाओ बाबा में, विलीन हो जाओ, बस तू ना रहे, मैं ना रहूं। बैठेंगे, कोई उठना नहीं बीच में से, बीच में उठक बैठक करने से दूसरे को भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। एकदम एक गीत लगाना, फिर उसके बाद 15 मिनट डीप साइलेंस, नो म्यूजिक, नो म्यूजिक, सब अपने मोबाइल्स ऑफ कर लो, डीप स्वीट साइलेंस के सागर में चलते हैं। चलो, कुछ बहनें मंच पर आ सकते योग कराने के लिए।
सांसों की माला में जिसकी याद है हीरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है हीरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दोस्त रो न कोई।
माता पिता